मनुष्य जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी कहीं न कहीं सामान्य दुखों का अनुभव तो होता ही है, विशेष दुखों का भी अनुभव होता है। सामान्य दुख को तो हम लोग अपना स्वभाव मान लेते हैं और विशेष दुख में थोड़े घबरा जाते हैं। उदाहरण के लिए कभी पेट खराब हुआ, कभी सर्दी जुकाम, पता है ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब कोई बड़ा रोग हो जाए, कुछ हो जाए ना, तब घबरा जाते हैं, बाप रे बाप कैसे ठीक होंगे, कैसे हो गया, क्यों हो गया। लेकिन ये विचार किया जाए, चाहे सामान्य दुख हो अथवा विशेष दुख हो, दुख तो दुख ही है। दुख का जो अर्थ है ना, ख का मतलब होता है इंद्रियां, और इंद्रियों में जो बुरापन है, अच्छा न लगना, यही तो दुख है। और अच्छा लगे तो वहां सुख हो जाता है। सुख दुख, दुर दुर शब्द से दुह बन गया, दुख विसर्ग है ना बीच में, दो बिंदी। खानी इंद्रियाणी, इंद्रियों में विषय के संपर्क होने के बाद जो अनुकूलता का अनुभव है वह है सुख, जो प्रतिकूलता की अनुभूति है उसी का नाम है दुख। ऐसे दुखों से छूटने के लिए न रहे बांस न बजे बांसुरी, न यह शरीर मिले न दुखों का सामना करना पड़े। आप लोगों ने यह श्रवण किया कि पुण्य कर्म, पाप कर्म और मिश्र कर्म, और खास करके मनुष्य जन्म तभी मिलता है जब पुण्य और पाप लगभग बराबरी के दर्जे पर हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। मनुष्य जन्म पूरे पुण्य का फल भी नहीं है और पूरे पाप का फल भी नहीं है, ये मिश्र कर्म का फल है। और इसलिए हम लोगों के जीवन में भी घालमेल रहता है। पुण्य होता है तो साथ साथ पाप हो जाता है, और पाप करते करते कभी कभी लगता है कि इसके प्रायश्चित के लिए थोड़ा पुण्य कर ले। तो मनुष्य जन्म एक जंक्शन है, यहां से हम देवता भी बन सकते हैं, मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, और इससे भी बद से बदतर योनि में भी जाने के लिए कर्म कर बैठते हैं, अर्थात बुरी योनियों में भी जाना पड़ सकता है। ये निर्भर करता है हमारे कर्म कैसे हैं। उसका उदाहरण इस लोक में दिख रहा है। हमारे सनातन धर्म की विशेषता पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करेंगे तो दो दोष आते हैं, और ये आप लोग सुने हुए हो। यदि हम पूर्व जन्म नहीं मानेंगे तो अकृत अभ्यागम, और पुनर्जन्म नहीं मानेंगे तो कृत विप्रणाश, ये दो दोष आते हैं। शब्दों का खेल है, अर्थ आपको सामान्यतया समझा देता हूं। अभ्यागम का मतलब होता है आना, और अकृत का मतलब होता है जो किया नहीं है, किया नहीं लेकिन फल आने लगा, इसको बोलते अकृत अभ्यागम। और कृत मतलब किया, और विप्रणाश लेकिन उसका फल नहीं मिला। एक जगह किया नहीं आने लगा, और एक जगह किया और नष्ट हो गया, ये तो ये दोनों दोष हो गया ना। करने के बाद मिले नहीं, और किया नहीं और मिलने लग जाए, ऐसा तो होता नहीं ना। अकृत अभ्यागम और कृत विप्रणाश। इस जन्म में हमारे सारे अच्छे कर्म हैं, लेकिन फिर भी हमें कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। यहां पर क्या मानेंगे कि पहले हमने कुछ किया होगा वह इस समय मिल रहा है। हम लोग शंका करते हैं, महाराज वो आदमी बड़ा उठपटांग है, कभी भी अच्छा काम नहीं करता, फिर भी वो सुखी है। और हम लोग मंदिर जाते हैं, सत्संग करते हैं, फिर भी दुख ही दुख आते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो वहां यही कहना पड़ता है कि इस जन्म में आप अच्छे कर्म कर रहे हो, लेकिन पिछले कुछ हमारे खोटे कर्म रहे होंगे जो इस समय फल के रूप में आ रहा है। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण दृश्यते, पूर्व जन्म के किए हुए पाप अथवा इस जन्म में भी जो हम लोग लुक छिप करके कोई दुष्कर्म करते हैं वो कभी न कभी परिणाम के रूप में सामने आता है। तो अकृत अभ्यागम और कृत विप्रणाश जो ये दो दोष हैं तब लागू होता है जो लोग पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। अभी जो हम कर रहे हैं ना, भले इसका सामने परिणाम अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन कालांतर में जाकर के कभी न कभी किए हुए कर्म का फल तो मिलेगा ही। पूर्व की कमाई पश्चिम में बेच खाई, आगरे के लिए कछु नहीं कीनो, ऐसा किसी ने सुनाया? पहले का कमाया हुआ अभी खा रहे, पूर्व की कमाई पहले की कमाई, पश्चिम में बेच खाई बाद में खा लिया, उसको बराबर कर दिया। आगरे के लिए, आगरा एक शहर भी है यूपी में, आगरे का ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है, और आगरे का मतलब होता आगा, आगे के लिए, आगरे के लिए कछु नहीं कीनो, आगे के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे लोग कैसे होते? बोले पटियाला के लोग, पटियाला मतलब बड़े बड़े तृष्णा कामना वाले, बड़े पेट वाले, ये पेट तो थोड़ी देर के लिए भर भी जाता है, लेकिन कामना तृष्णा रूपी जो पेट है ये कभी नहीं भरता। ऐसे पटियाला के लोग लाहौर लाहौर बोलते हैं, और लाओ और लाओ। सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार को जाइए, पटियाला से लाहौर से आने वाले लोगों को हरिद्वार आना होगा ना, तो सहारनपुर होके आना पड़ता है। वो सहारनपुर कौन है? तो सहारा है जिसका, ऐसे प्रभु के सहारा लेकर के हरि के द्वार जाए, और हरिद्वार नाम इसलिए पड़ा, बद्रीनाथ जाओ तो हरिद्वार, केदारनाथ जाओ तो हरद्वार, दोनों के लिए द्वार वही, रास्ता वही है, इसलिए हरिद्वार और हरद्वार बोलने में कोई अंतर नहीं। हरि और हर का अर्थ भी एक ही है, और हर की पौड़ी और हरि की पौड़ी भी बोलते हैं लोग। सन्यासी लोग प्राय हरद्वार बोलते हैं, और आम पब्लिक जो है हरिद्वार बोलती है। लिखा हुआ है ऑफिशियल जो स्पेलिंग भी है तो हरद्वार है, HARDWAR, लेकिन जब हम लोग उच्चारण करते हैं हिंदी के हिसाब से तो HARI होना चाहिए, हरिद्वार। तो हरद्वार और हरिद्वार दोनों अर्थ निकलता है। सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार को जाइए, जिसने जो भी कर्म किया, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये, हे गोविंद जो भी हमने कर्म किया सब आपको समर्पित करते हैं। तेना त्वदंघ्रि कमले, मैं अपने कर्मों के द्वारा आपके चरणों में समर्पित करके यही चाहता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए आप चरणों में, आपके चरणों में रति प्रीति प्रेम हो जाए। तेना त्वदंघ्रि कमले, आपके अंघ्रि कमल, अंघ्रि बोलते हैं संस्कृत में चरण को, तेना त्वद अंघ्रि कमले रति में यच्छ, आप मुझे अपने चरण कमल की प्रीति भक्ति दीजिए। कैसी भक्ति? तो शाश्वती, हमेशा हमेशा के लिए आपके चरणों में हमें स्थान मिल जाए। ऐसे प्रत्येक कर्मों को समर्पित जो करते चले जाते हैं ये भी एक ज्ञानी की कोटि में ही आते हैं। जो भी हमने किया अपने को न कर्ता मानना, और आगे लघु वासुदेव मरणम में कारयिता का भी निषेध करेंगे, न तो ये आत्मा कर्ता जैसे नहीं है वैसे कारयिता भी नहीं है। जो ये करण कायिक वाचिक मानसिक है, इन करणों के प्रेरक कौन है, किसके द्वारा प्रेरित होकर के कर्मों में हम लोग प्रवृत्त होते हैं, इसका प्रेरक कौन है, ये विचार आगे आने वाला है। उससे पहले जो चार प्रकार के ब्रह्मविद वरह, ब्रह्मविद वरीयान और ब्रह्मविद वरिष्ठ, चार का नाम गिनाया। तेषां मध्य, जैसे गीता के चार प्रकार के भक्त हैं, लेकिन उसमें ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, उदारा सर्व एवैते, चारों प्रकार के जो भक्त हैं वो सब के सब उदार, मतलब ऊंचे हैं, अच्छे हैं, लेकिन उन चारों में भी जो ज्ञानी है वो उन तीनों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। वो इसलिए एक ने संकट में पढ़ के याद किया, वो आर्त भक्त हो गए, एक ने जानने की इच्छा से मेरी तरफ बढ़ा जिज्ञासा पूर्वक, वो जिज्ञासु हो गया, और एक कोई मतलब था अर्थार्थी, किसी प्रयोजन से हमें याद किया, कोई भी प्रयोजन हो सकता है, लड़की की शादी नहीं हो रही इसलिए चले गए भगवान के पास, बेटे की शादी नहीं हो रही है या बीमारी लग गई, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, व्यापार में मुनाफा हो जाए, ये सब इस उद्देश्य से जो किया जाए उसको अर्थार्थी बोलते हैं, किसी प्रयोजन के लिए जो किया जाए। तो ये तीनों जो हैं कुछ न कुछ भगवान से अलग रह करके भगवान को चाह रहे हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं उदारा सर्व एवैते, चारों उदार तो है लेकिन इसमें भी तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, जैसा आता है ज्ञानी जो है नित्य युक्त है, हमेशा हमेशा के लिए मुझसे जुड़ा हुआ है। इसी के लिए कहते हैं भगवान ने कहा अध्यात्म विद्या विद्या नाम, विद्या में मैं कौन सी विद्या हूं, अध्यात्म विद्या, और 13वें अध्याय में क्या कह रहे, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, और यही है अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। 15वां अध्याय भी देखिए आप, 13वें अध्याय में साधनों में भी गिना दिया, और अध्यात्म विद्या विद्या नाम में भी भगवान अध्यात्म विद्या के ऊपर जोर दे रहे हैं। जो व्यक्ति होगा कैसा, नित्य युक्ता उपासते, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त, उनके नित्य युक्तता यही है कि वृत्ति का भी अभाव हो जाना, वृत्ति शून्यता जो है ये ब्रह्मविद वरिष्ठ में लागू होगा। वृत्ति बनती कैसे है, वृत्ति की शून्यता कैसे आएगी, इस बात पर जरा विचार कर लेते हैं। वृत्ति चौकोर खेत होगा, उसमें जब पानी जाता है तो पानी भी चौकोर दिखता है, गोल खेत होगा तो पानी गोल दिखता है, खेत तिकोना होगा तो पानी भी तिकोना दिखेगा। तो अब बताइए पानी न तो गोल है न चौकोर है न तिकोना वाला है, जैसा जैसा खेत है जिन जिन खेतों में वो पानी गया उस खेत के अनुसार उसका आकार बन गया, इसी को बोलते हैं वृत्ति, आकार बनना। कुर्सी को देखकर कुर्सी के आकार की वृत्ति, मनुष्य को देखकर, इसी को बोलते हैं मनुष्य आकार घटाकार, ये सब वृत्ति बनती है, और वृत्ति अभी बनानी कौन से पहले, तो ब्रह्माकार वृत्ति, हाँ स्वरूप वृत्ति जिसको कह सकते हो आप, ब्रह्माकार वृत्ति। तो मन से जो ज्योति निकली, विषय देश में गई, पुस्तक को देख करके पुस्तकाकार वृत्ति बनी, ये पुस्तक का पूरा चित्र हमारे मन में खींच के चला आया, इसी को सामान्यतया वृत्ति बोलते हैं ना। वेदांत परिभाषा आप पढ़ेंगे उसमें वृत्ति के ऊपर बहुत विचार आया है। तो दिन रात हम लोगों की वृत्ति तो एक वस्तु को देख करके बनती रहती है, लेकिन वह वृत्ति साथ ही साथ नष्ट भी होती रहती है, लेकिन कुछ वृत्ति हमारे मन में घर करके बैठ जाती है, और वह वृत्ति बार बार उसके चिंतन करने से, चाहे वो अनात्म वस्तु की वृत्ति हो, कह सकते हैं आप दुश्मन को आप बार बार याद कर रहे हो, तो दुश्मनाकार वृत्ति दृढ़ होगी कि अदृढ़ होगी, यदि किसी दुश्मन को आप याद करोगे तो वो वृत्ति दृढ़ होगी ना, और करना क्या चाहिए हमें, वृत्ति को हटाना है। वृत्ति बनती है जब किसी ने हमें कोई शब्द सुनाया, वाणी का प्रयोग किया और ये वाणी दिन रात हम सबके शरीर में कुछ न कुछ वृत्तियां बनाती है, बोल करके, सुन करके, सुना करके। उत्तम साधकों के लक्षण बतलाते हुए कहते हैं कि सबसे पहले मौन धारण करने का अभ्यास करो। मौन व्याख्या प्रकटित वपुः। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब गए ब्रह्मा जी के पास, हालांकि भागवत में वो शायद दूसरे कल्प की कथा होगी, तभी तो हंस के रूप में भगवान स्वयं आए ज्ञान देने के लिए, जिसे नाम ही पड़ेगा उसका हंस गीता, हंस गीता, हंस के रूप में ज्ञान दिया न। तो वहां जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जाते हैं, ब्रह्मा जी को देखा ये सृष्टि बनाने में लगे हुए हैं, ये हमें क्या ज्ञान देंगे। और तो जो माया में स्वयं पड़ा हो हमें माया से कैसे छुड़ाएगा, श्रद्धा नहीं हुई। चले गए शंकर जी के पास, विष्णु के पास। विष्णु जी को भी देखा, बड़े मायावी है, वहां भी उनके मन में श्रद्धा नहीं हुई। शंकर जी को भी देखा पार्वती जी के साथ बैठे हुए, वहां भी श्रद्धा नहीं हुई। शंकर जी ने सोचा अब तो इनको कोई मिलने वाला है नहीं, और हैं ये उत्तम अधिकारी, ज्ञान के अधिकारी तो हैं, लेकिन इनके मन में श्रद्धा इसलिए नहीं है क्योंकि नारी के साथ ब्रह्मा जी को, विष्णु को और हमें देखा, इसे इनके मन में श्रद्धा नहीं हुई। तब जाकर के भगवान शंकर ने बट बिटप समीपे भूमि भागे निशरणम सकल मुनि जनानाम ज्ञान दातारम आरात। आरात मतलब जल्दी, आरात उपकार बोलते हैं। बट बिटप समीपे, भगवान विष्णु को पीपल का वृक्ष प्रिय है, इसलिए भगवान ने गीता में अश्वत्थ वृक्ष का उदाहरण दिया। हालांकि अश्वत्थ का वहां बहुत सारे अर्थ किया है, उस उद्देश्य से अश्वत्थ का नाम लिया होगा। यदि ऐसा होता तो भगवान विष्णु उसके सहस्र नाम में न्यग्रोधो दुम्बरो स्वत्थश्चाणूरांध्रनिसूदना, तो वहां पर सबसे पहले नाम आया न्यग्रोध। तो न्यग्रोध क्या है, वही है बरगद का पेड़, बट न्यग्रोध बोलते बट को, बरगद को, और उदुम्बर गुलर। न्यग्रोधो दुम्बरो अश्वत्थ, तीनों का एक साथ नाम आया है। न्यग्रोधो दुम्बरो स्वत्थश्चाणूरांध्र, चाणूर और अंध्र, जो आंध्र प्रदेश नाम पड़ा है ना, और निसूदन मतलब इसका निसूदन किया, इसको मारा, चाणूर को मारने वाले, कंस चाणूर मर्दनम जैसे है, तो वही है चाणूरांध्र, चाणूर और अंध्र निसूदना। मधुसूदन जो सूदन अर्थ है ना, सूदित करना, दंडित करना, निसूदन किया, दंडित किया, मारा। तो ये जो बरगद का पेड़ है भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। शिव जी ने ही दक्षिणामूर्ति का रूप धारण किया। दक्षिणामूर्ति भगवान जब भी आपको मिलेंगे तो बरगद पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। बट बिटप समीपे भूमि भागे निशरणम सकल मुनि जनानाम, जितने भी थे सरक सनंदन सनातन सनत कुमार, ज्ञानम ज्ञानदातारम आराध, ज्ञानदातारम आराध, त्रिभुवन गुरु मीशम दक्षिणामूर्ति रूपम जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि। जनन मरण दुख छेद, सबसे बड़ा दुख है भाई। हम लोग तो अभी आकर के सोचते हैं, कभी कभी कमरा बंद हो जाए तो लगता है सांस निकल जाएगी, सफोकेशन हो गया, खिड़की खोलो, एसी चलाओ। यहां देखो 9 महीने तक गर्भ में थे, वहां भी श्वास ले रहे थे, कौन था ऐसा जो। हाँ भागवत के प्रसंग नहीं सुना आपने, प्रहलाद जी के ऊपर बड़ा अत्याचार कर रहा था हिरण्यकश्यपु, तो बहुत तरह से उनको मारने का प्रयास किया, जब कुछ भी नहीं कर सका तो अंतिम में कहा इसको एक कमरे में बंद कर दो। बंद कराने के बाद ताला लगवा के चाबी अपने पास रखवा लिया, कहीं द्वारपाल के मिली भगत न हो जाए, गड़बड़ न कर दे, इसीलिए। उसके बाद भी पहरेदारी के लिए रख दिया उन सबको कि देखना ये क्या करता है। वहां देखते क्या है, पहरेदारों ने देखा अंदर लाइट जगमगा रही है, ज्योति का प्रकाश देखा। द्वारपालों ने सोचा आज हमारी खैरियत नहीं, हिरण्यकश्यपु सोचेगा कि भाई लाइट कहां से आ गई, अंदर जाके अभी बता देना चाहिए। और वो लाइट ये थी कि भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में लेटे रहते हैं, तो लक्ष्मी जी को लगाए हुए कि सबकी व्यवस्था तुम करो। तो लक्ष्मी जी ने कहा भगवान सब लोग तो संसार में ठीक हैं, आपका परम भक्त जो प्रहलाद है वो सबसे ज्यादा दुखी है। तो कहा ये तो तुम्हारी व्यवस्था है, कोठारी तो तुम ही हो, प्रबंधक मैनेजर, व्यवस्था करो भोजन की। तो 56 भोग की थाली लगा करके किस दरवाजे से गए होंगे बताइए अंदर। वो जो थाली में भोजन कर देखा प्रहलाद जी के सामने, वही खबर गई हिरण्यकश्यपु के पास, भागे भागे आया। द्वारपालों ने कहा कि चाबी भी आपके पास है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, ताला लगा हुआ ऑलरेडी, उसके बाद भी अंदर कैसे थाली आई, कैसे प्रकाश हो रहा है पता नहीं। प्रहलाद जी के पास जब आकर के दरवाजा खोल के पूछता है हिरण्यकश्यपु कि बता ये थाली कहां से आई, लाइट कैसे है। प्रहलाद जी बोले यहां तो थोड़ा बहुत दरवाजा खिड़की के छेद आदि भी है, जो मां के गर्भ में पहुंच सकता है वहां रह करके पालन पोषण कर सकता है, उसका यहां आना कौन सी समस्या है, कौन सी बड़ी बात है। समझ में आ गया, जिसने गर्भ में हमारा पालन पोषण किया, ना कोई सफोकेशन हुआ, ना कभी कोई दम घुटा, बढ़िया से 9 महीने के बाद तैयार होकर के रेडीमेड। और मुझे लगता है ये 9 महीना जो रखा होगा ना भगवान ने समय, ये 9 महीना पूर्ण का अंक होता है। मतलब हम लोग का शरीर जो बना है संसार के वस्तुओं का उपभोग करने के लिए, अपने आप में ये पूर्ण है, बढ़िया से बनाया, 5 उंगली सोचा इतने से इसका काम चल जाएगा, यही है ना। आप पहले लोग बोलते थे काला अक्षर भैंस बराबर है, अंगूठा छाप है, और इस समय अंगूठे का इतना महत्व हो गया, इस अंगूठे के बिना न तो व्हाट्सएप मोबाइल चल सकता है, इस अंगूठे को चाहे फिंगरप्रिंट देना हो, आधार कार्ड बनेगा तो फिंगरप्रिंट चाहिए, साइन करना आए ना आए ये जरूर चाहिए सबको। हाँ कितने, और विदेशों में देखो ना गाड़ी के लिए रास्ता दे देते जब ऐसा दिखाते, यहां दिखा तो क्या उलट ठेंगा दिखा रहा है। अब तो अच्छा मानते हैं इसको, लेकिन प्राय पहले इसी अर्थ में रूढ़ था, ऐसा दिखाना मतलब ठेंगा दिखाना। तो प्रहलाद जी ने कहा कि जो गर्भ में आ सकते हैं उनके लिए यहां आना कोई बड़ी बात नहीं है। तब हिरण्यकश्यपु को समझ में आया कि इसका मैं बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे प्रभु जो सबकी व्यवस्था करने वाले हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि, जन्म और मरण का छेदन करने में जितना कुशल है ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान के रूप में। और दक्षिणा शब्द का अर्थ तो सामान्यतया होता है भाई लिफाफा देना ही दक्षिणा है, लेकिन बुद्धिर मनीषा धीषणाधि प्रज्ञा सेबुषी मति, अमरकोश में बुद्धि के सब नाम गिनाया, बुद्धिर मनीषा धीषणा धी और प्रज्ञा सेमुषी और मति। तो दक्षिणा सेमुषी प्रोक्ता, दक्षिणा का अर्थ होता है सेमुषी, से तालब शकार, से मुंह और फिर पेट कटा हुआ शकार, सी सेमुषी। बुद्धिर मनीषा धीषणाधि प्रज्ञा सेमुषी मति, तो दक्षिणा सेमुषी प्रोक्ता, दक्षिणा का मतलब होता है ज्ञान, मूर्ति मतलब स्वरूप, ज्ञान स्वरूप जो है उनका नाम है दक्षिणा मूर्ति। ज्ञान स्वरूप मुद्रा में बैठ करके कैसे बैठे थे, तो यो मुद्रया भद्रया, भद्र मुद्रा के द्वारा बैठ करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सामने देखा, अरे ये लगता है ठीक है, ये मायाओं से, माया से परे हैं, रुक गए, उनके मन में श्रद्धा हुई, बोले गुरुदेव हम आपको अपना गुरु मानते हैं और हम लोगों की जो जिज्ञासा है तो वही है ना, जरण मरण दुख छेद दक्षम नमामि, जन्म मरण रूपी दुखों से छूटने का जो उपाय हो क्या है, कृपा करके हमें इसका उपदेश दीजिए। बैठे हैं शांत होकर, कुछ बोले ही नहीं, फिर पूछा, नहीं बोले, दो तीन बार जब ऐसा किया, मौन व्याख्या प्रकटित बपुहु, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। गुरु ने कौन सा व्याख्यान दिया, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, मौन हो गए, कुछ बोला ही नहीं, बोले आप कुछ बोल नहीं रहे, बोले बोलेंगे तो बादो नावलंब्य, वाणी का अवलंबन नहीं लेना चाहिए, जो जो वाणी से बोला जाता है उसमें कहीं न कहीं विवाद होने की संभावना रहती है, मौन हो जाओ, यही ज्ञान की अंतिम पराकाष्ठा है, चुप रहना। बोले यही है ज्ञान होने के बाद की स्थिति, जो उसके लिए तुम लोग आए हो, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, ज्ञान तुम्हें हो जाएगा। गुरु जी ने मौन होकर के ही दक्षिणामूर्ति के रूप में सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, ये आचार्य शंकर दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में विस्तार से बताते हैं। तो इस मौन की कितनी बड़ी महिमा है, जन्म लेने के बाद जब हम बालक, अच्छा पेट में पूछना तो नहीं चाहिए, आप लोग बता सकते हो, जब बच्चा पेट में होता है मां को कुछ सुनाई देता है, हाँ कुछ नहीं देता होगा ना सुनाई, हाँ नहीं नहीं, हिलता डुलता है, दर्द होता है वो तो है, लेकिन कुछ बोलता होगा अंदर थोड़ी सुनाई देता है, हाँ कुछ नहीं हुआ, बाहर आते आवाज करने लगता है, हाँ रोने लगता है, अंदर रो रहा था कि नहीं रो रहा था भगवान जाने, हाथ तो जोड़ रहा था कि निकालो जल्दी से यहां से, और बाहर आते तो लोग विनोद की बात करते हैं, आत्मपुराण में आया है ना कि गर्भ से बाहर निकलने से पहले पूरे रील की तरह पूर्व जन्म का सारा वो घूम जाता है, किस किस योनि में गया, मैंने कौन कौन से कर्म किए, हाथ जोड़ता है प्रभु जल्दी से निकाल लो, मैं इसका पूरा प्रायश्चित करूंगा, बाहर जाते मैं आपका ही केवल भजन करूंगा। लेकिन जैसे वो जो माया का दबाव पड़ता है ना मस्तिष्क पर, क्योंकि ये मस्तिष्क जो है खुला रहता है, परमात्मा ने यहीं से प्रवेश किया है, बड़ा एक कोमल होता है, लेकिन वो दबाव पड़ते ही जो पूर्व जन्म की स्मृति थी वो विस्मृत हो जाता, सब भूल जाते हैं, और जो अंदर बोल रहे थे वादा कर रहे थे मैं आपका भजन करूंगा, बाहर आते बच्चा जो रोता है ना, बोलते कहां कहां मैंने कब कहा कि आपका भजन करूंगा, बाहर आते ही धोखा देता है, भगवान बोलते अच्छा ठीक है, जब तुमने कह करके भी कहा कि कब कहा फिर मैं तुम्हें बताता हूं, और वो रोते रोते कितने दिन के बाद बोलता है बच्चा, साल भर के बाद ही बोलते हैं, तो धीरे धीरे अब मदालसा जैसे माँ हो तो कहे बेटा शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी संसार माया परिवर्जितो सी, अरे तू शुद्ध है बुद्ध है संसार के माया से परे है, तो अपने आप को सच्चिदानंद रूप मान, ऐसा उपदेश दे देती माता। अब वहां तो बोलते हैं बोलो पापा मम्मी ऐसे से रटवाते उसको, धीरे धीरे बोलते बोलते देखो यहां से शुरू होता है सारा काम, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत जो कहा है, जब हम अपने वाणी से अपने आप को प्रकट करते हैं तो नाम पड़ गया व्यक्ति। जितने भी हम लोग बैठे हैं क्या है, व्यक्ति। किसके द्वारा? अपने वाणी से जो व्यक्त करे तो नाम पड़ गया व्यक्ति। नहीं बोले तो कहते गूंगा, मौन धारण नहीं हो, गूंगा है, बोल नहीं पा रहा है, अंदर उसकी सारी वृत्ति चल रही है। वाणी चार चरणों में हमारे अंदर दिन रात रहती है, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और बैखरी। मां के गर्भ में रहने वाले बालक को मां के द्वारा जो भी खाया पिया जा रहा था, नाभि से जुड़े होने के कारण उसी से उसका भरण पोषण हुआ और 9 महीने में शरीर तैयार हुआ। गर्भ से निकलने के बाद जब तक नाल छेदन न हो जाए तब तक सूतक भी नहीं लगता, नाल छेदन के बाद सूतक लगता है। ऐसे अवसर को बोलते हैं प्रजातीर्थ। परीक्षित के जन्म काल में महाराज युधिष्ठिर ने बहुत दान पुण्य किए, ये भागवत में प्रसंग आता है। तो ऐसे प्रजातीर्थ माना जाता है नाल छेदन से पूर्व। नाल छेदन हुआ, अब मां के पेट में जो शरीर तैयार हुआ उसका तो डिस्कनेक्शन हो गया नाल छेदन से, लेकिन ये एंटीना भगवान का जो दिया हुआ है वो यहां फिट हो गया, वो एंटीना है नाभि, और इस नाभि के अंदर ही इंग्लिश सीखने के, हिंदी सीखने के, गुजराती, मराठी, पूरे दुनिया के भाषा व्यक्त करने की क्षमता कहां पर है? इस नाभि में। लेकिन जो मूल वाणी है जिसका नाम है परा, संकल्प रहित है ये वाणी। नाभि में रहने वाली वाणी का नाम जो परा नाम पड़ा ना, क्यों? परा मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठता क्यों है? क्योंकि वो संकल्प रहित है। संकल्प रहित वाणी ही निर्वृत्ति के संपादन में हेतु है, और वृत्ति जब बनती है, वृत्ति बनने में हेतु है वाणी में संकल्प आ जाना। जैसे जैसे हम लोगों के अंदर संकल्प उठता है तो नाभि से चल करके जब वाणी ऊपर की ओर आती है, हृदय में आने के बाद अब आपके मन में क्या है, क्या बोलना चाहते हो किसी को पता नहीं है, लेकिन आपको तो मालूम है कि हम क्या बोलने वाले हैं, तो हमें तो दिखाई दे रही है। दिखना मतलब जानना, हमें पता है कि हम क्या बोलने वाले, इसलिए उसका नाम रख दिया पश्यन्ति, परा, और दूसरा नाम पड़ा पश्यन्ति। नाभि में रहने वाली वाणी परा, हृदय में आने वाली वाणी का नाम पश्यन्ति। अब गले में आके मध्यमा नाम पड़ जाएगा, मध्यमा इससे नाम पड़ गया न, अब नीचे है न ऊपर है, मध्यम में, मध्य में आके रुक गया, बोलने वाला था ही, किसी ने कहा अभी आप चुप रहो या आप बाद में बोलना, तो जैसे उसने बोलने का प्रयास किया ना तो सबकी दृष्टि गई, अरे ये भी कुछ बोलना चाहता है, लेकिन अभी बोला नहीं ना, बोलता तो मालूम पड़ जाता क्या बोलना चाह रहा था। तो इसलिए मध्य में आकर के रुक जाने से उसका नाम पड़ गया मध्यमा। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, और वो बैखरी क्या है? बकरी है वो। हाँ, बकरी जैसे मैं करती है ना, असनम में, बसनम में, जाया में, बंधु वर्गो में, मैं इति ब्रुवाणम कालब्रिकम कालब्रिको हंति पुरुषाजम। असनम में, अब बोलने लगा बच्चा, बोलते मेरा खाना दे दो, पहले हम उसको खिलाते थे पकड़ पकड़ के, अब वो मांग मांग के खाना शुरू करा, मुझे दे दो। असनम में, ये मेरा भोजन है, वसनम में, ये मेरा कपड़ा है, दूसरे के कपड़े में हमें कभी ऐसा लगता है क्या कि ये मुझे मिल जाए, जो हम पहनना चाहते या मेरे पहनने लायक है उसी को देख के इच्छा होती है। साड़ी कितनी भी सुंदर हो, पुरुष थोड़े चाहता है ये साड़ी मुझे मिल जाए, कमीज कितने भी अच्छी हो, स्त्री नहीं चाहती कमीज मुझे मिल जाए, लेकिन जहां पर ममत्व की भावना आ गई कि ये वस्त्र मेरे लायक है तो बोलते वसनम में ये मेरा वस्त्र है। असनम में भी वही बात है, घास को देख करके, हरे हरे घास को देख के हम लोगों के आंखों में तो अच्छा लगता है देखने में, लेकिन पशु यदि देख ले तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा, कितने बढ़िया आज भोजन मिल गया। तो उसके भोजन में हमें ममत्व का भाव नहीं होता, लेकिन जो हम लोग खाते हैं खा सकते हैं। असनम में, अशनम तालब शकार, अशनम में वसनम में जाया में बंधुवर्गो में, ये मेरी पत्नी है, ये हमारे रिश्तेदार हैं। क्योंकि पहले होता है अहम, बाद में होता है मम, और फिर होता है तब। पहले मैं, फिर मेरा, फिर तेरा। मैं के बाद ही गड़बड़ शुरू हो जाती है, मैं मेरा तेरा, मम तब चलता है। तो जाया में बंधु वर्गो में इति ब्रुवाणम, मेरा है, मेरा है जो बोलने वाला है ना, वो कैसा है तो बोले वो बकरी की तरह है। जैसे वो बकरी बोलती मैं करती है, तो ऐसे बकरी के क्या होती, पशु के रूप में बलि चढ़ जाती है। काल ब्रिको हंती, काल रूपी जो ब्रिक मतलब भेड़िया, भीम कर्मा ब्रिको दरह, भीम के पेट के बारे में बताया, भीम का पेट कैसा था, जैसे भेड़िया जो जानवर होता है उसका पेट गोल पेट था, गोल पेट वाला खाता ज्यादा, पेट दिखता नहीं है। तो ऐसे भीम के बारे में प्रसिद्धि थी, इसलिए भीम का नाम है एक ब्रिकोदर, भेड़िया की तरह पेट है जिसका। तो ये है काल ब्रिको हंती, काल रूपी जो भेड़िया है ना, ये हम सबको खाए जा रहा है। कालो जगद भक्षक, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्त हो। भगवान गीता 11वें अध्याय में बोल रहे हैं, कालो अस्मि लोकक्षय कृत, संपूर्ण लोकों का मैं क्षय कर रहा हूं दिन रात, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम, प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद भक्षक, लक्ष्मी स्तोयतरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवनम, तस्मान् माम शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। अधुना रक्ष, अभी से आप हमारी रक्षा कीजिए। आयुर्नश्यति पश्यताम, अरे देखो देखो हर रोज आयु जा रही है। प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम, जो युवावस्था मिली है धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, वृद्धावस्था की ओर हम चले जा रहे हैं। प्रत्यायान्ति गता, जो दिन आए पुनर्न दिवसा, वो दिन लौट के आने वाला नहीं। कालो जगद भक्षक, ये काल रूपी परमेश्वर जगत का भक्षण किए जा रहे हैं। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला, लक्ष्मी के बारे में प्रसिद्ध ये बड़ी चंचल है, अथवा जल में उठने वाले तरंग हमेशा हिलती रहती है, आकाश में चमकने वाली बिजली जैसे दिखी, जब तक आपने देखा दूसरे को दिखाओगे तब तक तो गायब हो जाती है। बोले देखो बिजली चमक रही, कहां, बोले मैंने तो देखा तुम नहीं देख पाए। तो ये जो है लक्ष्मी तो यह तरंग भंग चपला विद्युत चलम, ये जीवन भी वैसा ही है, लक्ष्मी की तरह चंचल, जल में उठने वाले तरंग के समान चंचल, अथवा आकाश में कौंधने वाले चमकने वाले विद्युत बिजली के समान, ये जो जीवन है पानी में उठने वाले फेन झाग बुलबुले की तरह है। तरंग फेना ब्रह्मबुद्ध बुदादि, विवेक चूड़ामणि में आता है कि जैसे बुलबुले को पकड़ने जाओ ना, हाथ रखने से पहले फूट जाता है, दिखता तो है और हाथ रखने जाओ उससे पहले फूट जाएगा। ये जीवन भी वैसा ही है, हम लोग सोचते पकड़ लें पकड़ लें, संसरती इति संसार, खिसकता जा रहा है, हम पकड़ने की कोशिश करें ये सरकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है। आज तक कोई किसी को पकड़ के रख पाया, पकड़ ही नहीं सकते, इसीलिए असंभव है ये काम। विद्युच्चलम जीवनम जीवितम भी आता है पाठ में, तस्मान माम शरणागतम, इसलिए मुझ शरणागत को आप अपने शरण में स्थान दीजिए, शरण दो, आप सबको शरण देने वाले हैं, त्वम रक्ष, आप मेरे रक्षा कीजिए, ये भगवान शंकर की स्तुति में लोग बोलते हैं। तो अशनम में वसनम में जाया में बंधु वर्गो में इति ब्रुवाणम काल ब्रिको हंति पुरुषाजम, गर्भ से बाहर आए बोलने लगे मेरा तेरा शुरू हो गया, परा पश्यंती मध्यमा तक तो ठीक था मामला, अब हो गया बैखरी। बैखरी का अर्थ किया विशेषेण खे आकाशे रौती इति विकरा, जो जो हम लोग बोल रहे हैं ना ये सब के सब बिखर, बैखरी मतलब बिखरना, इसी से शब्द बना होगा जो बिखर जाता है ना, तो संस्कृत का शब्द है सामान्यतया देखा जाए, यहां तो बिखरना में पेट कटा हुआ बी लिख देते हैं हम लोग, लेकिन संस्कृत के हिसाब से य र ल व विखर, विशेषेण खे, खे मतलब आकाशे खम ब्रह्मा, आकाश के अंदर शब्द गुणकम आकाशम, जो हम लोग बोलते कहां गया आकाश में गया, तो आकाश में गया तो बीच में मन में कैसे वृत्ति बन गई, मन में वृत्ति बनती है इसलिए हमारे ज्ञानेन्द्रियों में जो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा, इन पांचों में श्रोत्र और नेत्र को सबसे उत्तम बताया। क्यों? इस समय आप लोग सत्संग कर रहे हो, सत्संग श्रवण कर रहे हो, अपने श्रोत्रेन्द्रिय से परमात्मा का जो लघु वासुदेव मरणम के आधार पर जो वेदांत श्रवण किया जा रहा है, इससे मन में परमात्मा के बांगमयी मूर्ति की वृत्ति बनी। ये कौन सी मूर्ति है? बांगमयी मूर्ति। और मंदिर आदि में जो मूर्ति देखते हैं नेत्र द्वार से मन में जाके वृत्ति बनती है, इसलिए शिवलिंग के बारे में आता है कि मूर्तम च अमूर्तम च, शिवलिंग क्या है? मूर्त रूप भी है और अमूर्त रूप भी है। महाकाल का श्रृंगार आप देखिए ना, हर रोज अलग अलग श्रृंगार करते हैं, कृष्ण का रूप भी बना देते हैं, राम का रूप भी बना देते हैं, और बड़े मूछदार भगवान शंकर को बनाते हैं, क्या देखने में दर्शनीय है। तो ये तो हम अपनी तरफ से कल्पना करते हैं, क्योंकि उपासकानाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना, उपासकों के कल्याण के लिए निर्गुण निराकार परमात्मा में सगुण साकार की कल्पना की जाती है, और उस कल्पना के आधार पर भगवान शंकर ऐसे जटाजूटधारी, क्योंकि प्रमाण मिल रहा है चंद्रोद्भासित से करे, तो इन सब के आधार पर चंद्रमा हो जटा हो तो ये शिव जी का रूप, आप फोटो देखते मालूम पड़ जाए तो ये शिव जी है। ये हम लोगों को बचपन से सिखाया गया तो किसी को बताना नहीं पड़ता, और आजकल स्कूलों में है इसलिए हर धर्म के ज्ञान आजकल अनिवार्य कर दिया, भारत में है कि नहीं पता नहीं, यूके आदि में मंदिरों में ले जाते हैं बच्चों को, मस्जिद में ले जाते हैं, गुरुद्वारे में ले जाते हैं, और सब बताते हैं देखो ये गणेश जी हैं, ये देवी जी हैं, ये शंकर जी हैं, ये राम जी हैं, और वो बच्चे लोग इतने ढंग से पहचान जाते हैं, तो इसलिए बच्चों को ले जाएंगे मंदिर में तभी तो पहचानेंगे। तो उस मूर्ति के दर्शन करने के बाद नेत्र द्वार से जो वृत्ति बनती है चित्त में, शब्द के द्वारा अर्थ के रूप में आरूढ़ होकर परमात्मा हमारे हृदय में आते हैं। अभी हम जो मूल विषय जहां से शुरुआत की थी उस पर आप ध्यान देना, वृत्ति के बनने में हम स्वतंत्र हैं या पराधीन हैं ये देखना है। जो हमारे ज्ञानेन्द्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियों में त्वचा से कोई वृत्ति नहीं बनती, जिह्वा से भी कोई वृत्ति नहीं बनती, खाते हैं उस रस का क्या रूप है आज तक किसी ने देखा है? मीठा खट्टा जो हम लोग बोलते हैं उसका रूप कैसा होता है किसी ने देखा? क्योंकि होता ही नहीं, रूप का ग्रहण तो नेत्रों से ही होगा, लेकिन रस का ज्ञान आंखों से ना होकर जिह्वा से ही होगा। अब ये जो वृत्ति बन रही है वांग्मयी मूर्ति मूर्त और अमूर्त के रूप में शिवलिंग के अंदर, लिंगाकार है तो कोई मूर्ति नहीं है, वो अमूर्त रूप है। और जब उसी में चांदी आदि के पंचमुखी बनाकर आप श्रृंगार करते हो या जहां पूजा करने हम बैठते हैं तो तामूलम समर्पयामी, तो शिव जी का मुंह हम वही मान लेते हैं, वहां कोई मुंह तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि परमात्मा व्यापक है, इस भाव से वहां विचार किया है तो अमूर्त रूप में हम उनकी उपासना भी कर लेते हैं। इसलिए शिवलिंग पूजा के इतना महत्व है कि मूर्ति के रूप में और अमूर्ति के रूप में शिवलिंग की ही पूजा होती है, जो और मूर्तियों में ये विशेषता नहीं है। शिव पुराण में इसका वर्णन आया कि शिवालय में उमा महेश्वर की मूर्ति भी हो और शिवलिंग न हो तो मंदिर मंदिर नहीं है, शिवलिंग का होना बहुत जरूरी है। फिर कहा किसी ने कि ऐसा क्यों है, तो बोले तात्विक रूप में परब्रह्म परमात्मा के रूप में परात्परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तो परात्परम परमात्मक लिंगम, वो परब्रह्म परमात्मा है इस रूप में, और बाकी देवताओं के लिए कह दिया ये सब थोड़े शिव जी से नीचे है। अब शिव पुराण की कथा है इसलिए ऐसा कह देते हैं, हैं तो सभी परब्रह्म परमात्मा। तो केवल शिवालय में ये बताया कि जहां मूर्ति हो और शिवलिंग न हो फिर भी वो शिवालय नहीं माना जाएगा, और शिवलिंग हो और शिव जी की मूर्ति न भी हो तो चलेगा, ऐसा है। तो मूर्त और अमूर्त के रूप में जिनकी उपासना होती है, भगवान विष्णु के वाहन कौन है, गरुड़ जी। गरुड़ के आवाहन के लिए क्या करते हैं गरुड़ जी, घंटी बजाते हैं। घंटी क्यों बजाते हैं, आगमार्थम तु देवानाम, देवताओं के आगमन के लिए आइए, और जो पहले से दूषित वातावरण है, गमनार्थम तु रक्षसाम, जो राक्षस वृत्ति है सब बाहर जाए, अंदर वाले बाहर जाओ और बाहर वाले अंदर आओ, बंबई के लोकल ट्रेन की तरह अंदर वाले खाली करो तो बाहर वाले घुसे। अब लोग उतरने तो देते नहीं, पहले चढ़ना शुरू कर देते हैं। तो घंटी बजा करके कहा भाई जो हमारे घर में दूषित चीजें वो बाहर निकल जाए, देवताओं का आगमन होने वाला है। तो घंटा जो पकड़ते जाओ वहां पर गरुड़ जी के चिन्ह बना हुआ है, और सुपर्णोशी गरुत्मा स्त्री वृत्ते शिरो गायत्र चक्षुर बृहद रतंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदागु, चारों वेद का प्रतीक बताया, उसमें बहुत सारे उसके अर्थ हैं। तो सामान्यतः आप इतना आज मान के चलो समय हो रहा है, अभी वृत्ति तो बनी नहीं, कल बनेगी लगता है, अभी शुरू। तो हुआ क्या है, गरुड़ जी हैं, गरुड़ के ऊपर कौन बैठते हैं, भगवान। तो गरुड़ हैं आकाश में उड़ने वाले, वो शब्द के प्रतीक हैं, और भगवान गरुड़ के ऊपर अर्थ के रूप में आरूढ़ होकर के हम लोगों के कान रूपी रास्ते से हृदय में उतरते हैं। हाँ, तो ये जो अभी आप कथा सुन रहे हो, ये वांग्मयी मूर्ति उतर गई, मंदिर गए तो स्थूल मूर्ति भी हृदय में उतर गई, ये वृत्ति हमेशा बनी रहे, दूसरी वृत्ति ना आए, तब तो हम धीरे धीरे ब्रह्म विद वरिष्ठ की तरफ बढ़ेंगे, और नहीं तो थोड़ी देर के लिए आया फिर हट गया, कभी हम ब्रह्मविद वरह और ब्रह्मविद वरीयान में ही लटके रहेंगे। तो वृत्ति युक्तता पहले कैसी हो और बाद में वृत्ति शून्यता की बात करेंगे, ये प्रसंग फिर आएगा आगे। आज इतना ही रखते हैं, हरिओम।